ईरान के महान बुद्धिजीवी।
श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम श्रृंखला ईरान के महान बुद्धिजीवी की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ज़हरा ज़ैदी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें। कार्यक्रम में वालेह दागिस्तानी के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
जैसा कि हम पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि अली कुली खान का जन्म सफर के महीने में सन 1124 में इस्फान में हुआ था। वे वालेह दागिस्तानी के नाम से मशहूर हुए थे। अली कुली खान के पिता का नाम मोहम्मद अली खान था, जो वर्ष 1126 हिजरी में ईरान के बिगलर बीगी के पद पर आसीन हुए। 7वीं से 12वीं शताब्दी हिजरी में बिगलर बीगी बड़े राज्यों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर को कहा जाता था। ये पद हासिल होने के बाद मोहम्मद अली खान इस्फहान से ईरान चले गए। उस समय अली कुली की आयु मात्र 2 साल की थी, जो अपने पिता के साथ ईरान पहुँचे। नकजवान में अली कुली खान के पिता का देहांत हो गया। पिता के निधन के बाद दागिस्तानी अपने परिवार के साथ इस्फहान लौट आए।
वालेह दागिस्तानी अपने चाचा की बेटी खदीजा से प्यार करते थे। वालेह ने अपनी जीवनी में इस बात की ओर इशारा किया है। दागिस्तानी खदीजा से प्रेम तो करते थे, किंतु वे उसके साथ विवाह नहीं कर सके। अली कुली की मां ने खदीजा सुल्तान की मां के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें दोनों की शादी सादे ढंग से किए जाने की बात कही गई थी। कुछ दिनों बाद खदीजा के घर वालों ने महमूद अफगान के दबाव और धमकियों के चलते विवश होकर उसकी शादी महमूद अफगान के एक रिश्तेदार से कर दी। खदीजा से विवाह न करने के कारण दागिस्तानी बहुत दुखी हुए, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं और गज़लों में बड़े मार्मिक ढंग से किया है। अली कुली उर्फ वाले दागिस्तानी को खदीजा को खो देने के कारण अत्यंत दुख रहता था। वे दर दर घूमते रहते थे। सन 1144 हिजरी में नादिर शाह के सत्ता में आने के बाद 20 साल की आयु में दागिस्तानी ने देश छोड़ने का निर्णय लिया। अत्यधिक कठिनाइयां सहन करके वे भारत पहुंचे। 46 वर्ष की आयु में उनका निधन दिल्ली में हो गया था। उनको वहीं पर दफन कर दिया गया।
फारसी भाषा में लिखी जाने वाली जीवनियों में सामान्यतः जिसकी जीवनी लिखी जाती थी, उसमें उसकी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता था। किताब की प्रस्तावना में संकलनकर्ता किताब को संकलित करने के कारण का उल्लेख करते थे, ताकि पढ़ने वाले को इस बारे में कुछ आइडिया हो। तज़किरतु शोरा की प्रस्तावना में वालेह दागिस्तानी की बातें बताती हैं कि इस पुस्तक से उनका उद्देश्य संस्कृति की टीका टिप्पणी करना है। उनका उद्देश्य केवल पुराने कवियों के नाम और उनसे संबंधित बातों का उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि जिसकी जीवनी पेश की जा रही है, वो पढ़ने वाले विशेषकर उसके बारे में जिज्ञासा रखने वाले को कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सके। इस बात को व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने 4 बातों को दृष्टिगत रखा है। पहली बात यह है कि शेर या कविता के सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख, कवियों के अच्छे शेरों या कविताओं का उल्लेख, उस काल की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख, और अंत में उन्होंने कविताओं के मापदंड को भी स्पष्ट किया है।
वालेह ने उस समय अपनी किताब तज़किरतु शुअरा का संकलन किया है कि जब भारत में कवियों की जीवनियां लिखने का चलन अपने चरम बिंदु पर था। उस काल में आए दिन कवियों की जीवनियां प्रकाशित हुआ करती थीं। इनमें उचित ढंग से जीवनियों को प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अर्थात इससे संबंधित नियमों को अनदेखा किया जाने लगा था। जीवनियां लिखने वाले एक दूसरे की नकल किया करते थे। यही कारण है कि वालेह ने कविता की बहुत ही गहन आलोचना की है। उनका मानना था कि इसका मुख्य कारण तत्कालीन समय में कविता के गिरते मेयार को सुधारना था।
वालेह अपने काल के साहित्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। उनका मानना था कि सुल्तान हुसैन बायकरा के काल से साहित्य पतन की ओर उन्मुख हो चुका है। उनका कहना था कि इस काल के दौरान कवियों के बारे में बहुत अधिक अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। कुछ लोग कविता की आरंभिक जानकारी के साथ ही स्वयं को बहुत बड़ा कवि मानने लगे थे। संभवतः यही कारण था कि उस काल में कविता का पतन होने लगा था। वाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके काल में स्वयं को कवि कहलाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जबकि वे साहित्य के ज्ञान से बहुत दूर थे। इन बातों के बावजूद वाले ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा और उस समय जिन कवियों के शेर अच्छे होते थे उनकी उन्होंने प्रशंसा की है।
वाले का काल वही काल है जब फारसी कविता की हिंदी शैली अपने चरम पर थी, जिसे तर्ज नौ के नाम से भी जानते थे। इस शैली को बाबा फुगानी शिराजी ने जन्म दिया और साहिब तबरेजी व बेदिल देहलवी ने इसे उसके शिखर तक पहुंचाया था। बाद में तर्ज नौ शैली में संतुलन नहीं रखा गया, जिसके कारण वो अपने अंत को पहुंच गई। वाले दागिस्तानी ने अपनी किताब में जहूरी तुर्शीजी की कविताओं को तर्ज नौ के अंत का मुख्य कारण बताया है। उनके अनुसार तर्ज नौ शैली के अंत में तीन कवियों की मुख्य भूमिका रही है, वहशी बाफिकी, जहूरी तुर्शीजी और शौकत बुखारी। उनका कहना है कि इन तीनों कवियों ने ऐसे मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया जिस पर आगे बढ़ने की उनके भीतर क्षमता नहीं थी, जिसके कारण वे दिग्भ्रमित हो गए। कहते हैं कि इन तीनों कवियों ने रास्ता तो सही अपनाया, किंतु उनके बाद उनके अनुयायी निरर्थक बातों में लग गए, जो शैली के विनाश का कारण सिद्ध हुआ।
वाले ने अपनी पुस्तक में शायरी के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। वे तथाकथित शायरों से बड़ी दुखी थे, इसलिए वाले का प्रयास था कि शायर के लिए ऐसे मापदंड स्थापित किए जाएं जिससे सच्चे और तथाकथित शायर को पहचानना आसान हो जाए। जब वाले ने शायरी का मापदंड पेश किया तो फिर उसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में कवि उस पर खरे नहीं उतरे। इस प्रकार तथाकथित और वास्तविक शायरों को पहचानना आसान हो गया। वाले दागिस्तानी ने शायरी के लिए जो मापदंड पेश किए थे उनमें से ये किया था कि वास्तविक कवि वो है जिसको मुहावरे वाली भाषा पर पूरा अधिकार हो, किसी अच्छे कवि का शिष्य रह चुका हो और उसके भीतर शेर कहने की योग्यता पाई जाती हो। उनका कहना है कि शायरी ऐसी चीज़ है जो हर एक को नहीं मिल पाती, बल्कि ये ईश्वरीय देन है।
वाले की किताब रियाज़ुश्शुअरा में कविता के बारे में उनके गूढ़ दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है, जिससे उनके विस्तृत ज्ञान का आभास होता है। उदाहरण स्वरूप, वाले ने विख्यात कवि सादी शिराजी की कविताओं की व्याख्या में फारसी गज़ल के इतिहास की चर्चा की है। साहित्यिक आलोचकों का कहना है कि उस काल में संबंध में इतनी अधिक जानकारी वास्तव में वाले के ज्ञान को दर्शाती है। वाले का मानना है कि सादी गज़ल के बहुत पुराने उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदरता से गज़लें कही हैं। उनका कहना है कि सादी से पहले गज़ल वास्तव में गज़ल नहीं होती थी, बल्कि एक प्रकार का कसीदा हुआ करती थी जिसे गज़ल कहा जाने लगा था। इस प्रकार की बातें फारसी भाषा में लिखी जाने वाली जीवनियों में इससे पहले बहुत कम ही दिखाई देती हैं। वाले का मानना है कि कविता या शायरी में विकास पाया जाता है जो आगे की ओर बढ़ती है। वो कहते हैं कि ये बात समीक्षा से समझ में आती है।